नमो भगवते वासुदेवाय।
हेरो सिंगार करने दो जरा। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय
प्रीति देवाय भक्ति देवाय
भक्ति देवाय
माधुर्य देवाय
माधुर्य देवाय
मम देवाय
मम देवाय
प्रभु देवाय
प्रभु देवाय।
ओम
नमो भगवते वासुदेवाय।
सती का सिंगार पति की प्रसन्नता और आरोग्य के लिए होता है। बजारू हल्का धंधा करने वाली का सिंगार और परफ्यूम वर्फ्यूम ग्राहक को फंसाने के लिए होता है, और संत का सिंगार परमात्मा की याद दिलाने के लिए और परमात्मा की याद में बोलने के लिए परमात्मा चेतना से जुड़ने वाला होता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। नारायण नारायण बोलो ना। नारायण नारायण नारायण। नर नारी का अयन जो आत्मा है वह नारायण। अगर इस मंत्र का उच्चारण करके कोई काम किया जाता है तो उसमें आने वाले काम में आने वाले विघ्न बाधा टिक नहीं सकते और सफलता उसके चरण चूमती है, ऐसा मंत्र है। मदन मोहन मालवीय जी को उसकी मां ने दिया था। बोले बेटे गाय तो दूध देगी लेकिन बैल से भी तू दूध निकाल सकेगा, ये मंत्र ऐसा है। भैंस तो दूध देगी लेकिन वो पड्डा है ना, उससे भी दूध निकलवाने की तरकीब देती हूं। और उन्होंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे भैंसे धोए, ऐसे ऐसे बैल दोए जिसकी कथाएं मैंने कई बार कही है। आज भगवान बुद्ध की बात समझ लेना, आपके अंदर कैसी विलक्षण लक्षण वाली भगवत सत्ता और शक्तियां छुपी है। करोड़ों जन्म हुए मनुष्य को धरती पे आते लेकिन अभी तक अपनी योग्यताओं का 100वां हिस्सा भी विकसित करने में सफल नहीं हुआ, लाखवां हिस्सा विकसित हुआ और वो बुद्धिजीवियों की लाइन में माना जाता है लाखवां हिस्सा। भगवान कृष्ण ने मनुष्य की सुषुप्त शक्ति खोलने के लिए कई उपाय बताए और अपने आचरण से करके भी दिखाया। यज्ञ के समय श्री कृष्ण साधुओं के चरण धोने की सेवा उठाई, श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 84वां अध्याय 10वां स्कंद 84वां अध्याय 12वां और 13वां श्लोक भागवत का पढ़ के देखो, श्री कृष्ण ने कैसी कैसी सुंदर कुर्बानियां की अपने समाज की सर्वांगी उन्नति के लिए। भागवत में प्रसंग आता है कि कुछ साधु संत चरण धुलवा लेते थे लेकिन कुछ पहचानने वाले साधु कृष्ण को बोलते ये क्या कर रहे हो, रुको, तुम्हें बेटा चाहिए, धन चाहिए, यश चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम कौन हो, हम तुम्हें पहचानते हैं, और फिर ये क्यों कर रहे हो हमारे चरण धोना अथवा हम लोग भोजन कर और हमारी पत्तल उठाना, ये सब लीला मत करो, लीलाधर हम तुमको पहचानते। तब श्री कृष्ण कहते हैं भागवत के 10वां स्कंद 84वां अध्याय 12वें और 13वें श्लोक का मैं अनुवाद सुनाता हूं आपको। केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं है और केवल मिट्टी या पत्थर या किसी धातु की प्रतिमा ही देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता है, क्योंकि तीर्थ और प्रतिमा का बहुत समय तक सेवन करने से लोगों को लाभ होता है, लेकिन संत महापुरुष अपनी वाणी से, अपने अनुभव से और अपने वैदिक ज्ञान से मनुष्य को ऐसी ऊंचाई पर ले जाते हैं जहां सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश और वायु और वाणी और मन के अधिष्ठाता देवता की उपासना करने पर भी मनुष्य पूरा निष्पाप नहीं हो पाता। वासनाएं बनी रहती है, अज्ञान बना रहता है, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि, भगवान दूर है, भगवान हमसे अलग है, हम भगवान से अलग है, ऐसी बेवकूफी बनी रहती है। देवता अलग है और हम अलग है। अरे देवता का देवत्व जिस परमात्मा चेतना से है उसी से हमारा उपासकत्व है। गीजर अलग है, फ्रिज अलग है, टीवी अलग है, पंखा अलग है, ट्यूबलाइट अलग है और बल्ब अलग है, टिल्लू पंप अलग है, लेकिन लाइट सब में एक है। ऐसे ही मन अलग है, बुद्धि अलग है, शरीर अलग है। भैंस का शरीर और हमारा शरीर अलग है, लेकिन भैंस की आंखें जिस सत्ता से देखती है उसी चैतन्य सत्ता से मेरी आंखें देखती। माँ ने रोटी खाई, सब्जी खाई, कुछ खाना खाया और हम गोद में आए तो उसी खाने से दूध बन गया। और भैंस काली कलूट हरा और पीला खाना खाती है और सफेद दूध बनाती है। ये सत्ता उसी परमात्मा की है कि बच्चा भोजन या कुछ आहार करने के लायक हो जाए तो माँ का दूध बंद हो जाता है। और मनुष्य के बच्चे को जितनी जैसी दूध की आवश्यकता होती उसमें ऐसा, और भैंस के बच्चों के लिए जैसी जरूरत होती वैसा। अच्छा काम करते हैं तो बुद्धि में प्रकाश देते हैं, बल देते हैं, निर्भीकता देते हैं। क्यों भाई, इधर देख रहे हैं ना आप लोग, कल दारू पीकर सड़कों पर बेहोश पड़े थे ना। बोले नहीं बाबा हम नहीं थे। अरे तुम ही तो थे। बोले ना हम नहीं थे। अरे हमने देखा था सड़कों पे दारू पी के बेहोश होकर कुछ का कुछ बोल रहे थे। बोले बाबा दूसरा कोई होगा, मैं बोलता हूं तुम ही थे। तो आपके अंदर बल बढ़ेगा कि बाबा हम नहीं थे। भले आप बोलते हो तो हम हां भर देंगे, लेकिन हमारा दिल नहीं मानता। वो बल कौन देता है? कोई झूठा आरोप लगाए तो उसको उखाड़ने का बल कौन देता है? और सच्चा आरोप है और हम उखाड़ते तो हृदय की धड़कने कौन बढ़ाता है? वो सच्चिदानंद परमात्मा की विवेक शक्ति है। बेटे ने खून कर दिया, नेता था, चक्कर काटे और कैसे भी खून से छूट जाए, न्यायालय से छूटा नहीं और सजा आ गई। बेटे का बाप मां को कहता है, अपनी पत्नी को कहता है, भाई कुछ भी हो मैंने तो कोशिश की, लेकिन आखिर गुनाह तो गुनाह होता है, सत्य तो सत्य होता है, सत्य के पक्ष में हमारी बुद्धि झुकाव दे देती है। बेटा जेल में गया फिर भी बाप कहता है भाई क्या करें, हमने तो बहुत कोशिश की, लेन देन भी की, लेकिन आखिर तो भाई पाप तो पाप है, गलती तो गलती है। बुरे से बुरे आदमी के हृदय में भी, बुद्धि में सत्य का प्रकाश कौन देता है? सत्य स्वरूप परमात्मा। तो पाप का पूरा नाश नहीं होता बाहर के देवताओं को पूजने से, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का अंत नहीं होता। वह और भी दृढ़ होती है। परंतु यदि एक घड़ी दो घड़ी आधी घड़ी ज्ञानवान संत का सत्संग मिल जाता है, उन महापुरुषों की सेवा श्रद्धा आदि प्राप्त हो जाती है, तो पाप ताप मिटा देते हैं, क्योंकि वे भेद बुद्धि को नाश कर देते हैं और हमें आत्मा परमात्मा की उपासना साधना बताकर स्वतंत्र बना देते हैं। जो मनुष्य वात पीत और कफ इन तीन धातुओं से बने हुए शव तुल्य से शरीर को मैं मानता है और अपने मैं तथा स्त्री पुत्र में अहम बुद्धि मेरी बुद्धि करता है और मिट्टी पत्थर आदि देवता और जलाशयों में श्रद्धा रखता है, काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है तथा जो केवल जल से भरे स्थानों को तीर्थ मानता है, लेकिन ज्ञान से भरे हुए ज्ञानी महापुरुषों को तीर्थ और देव नहीं मानता, वह मनुष्य साक्षात गधा है, पशुओं में नीच गधा है। भागवत का 10वां स्कंद 84वां अध्याय 11वां, 12वां और 13वें श्लोक का मैंने अनुवाद पढ़ के तुमको सुनाया, तो पता चल जाता है कि सत्संग की कितनी बड़ी भारी महिमा है। रिद्धि सिद्धि मिल जाए, दुनिया का राज्य मिल जाए, धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, लेकिन परमात्मा तत्व का सत्संग देने वाले सत्पुरुषों का सानिध्य, शास्त्र पढ़ पढ़ के कहानियां बताने वाले कथाकार मिल जाए, ठीक है, धन्यवाद। इस चीज का ये फल, इसका ये फल, ठीक है, फलश्रुति वाले ज्योतिषी मिल जाए, ठीक है, लेकिन इस आत्मा को ठीक से जानने वाला परमात्मा ज्ञान देने वाला संत मिल जाए, तो बोले एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी
आधी घड़ी,
सब बोलो एक घड़ी आधी घड़ी,
एक घड़ी आधी घड़ी,
आधी में पुनिया आध,
आधी में पुनिया
तुलसी संगत साधकी,
तुलसी संगत साधकी,
हरे कोटि अपराध,
हरे कोटि
अपराध, करोड़ों करोड़ों पाप ताप नष्ट होने लगते। सत्संग की ऐसी बड़ी भारी महिमा है। कई बड़े बड़े सरकारी अधिकारी और कई राजकुमार और कई राजा लोग बुद्ध का सत्संग सुनने को जाते, मेरे पास भी आते हैं, कोई उसमें से साधक बन जाते थे समर्पित। उन समर्पित साधक को शिष्यों ने बुद्ध से पूछा कि भंते, चट्टान से भी अधिक कोई कठोर चीज है क्या? बुद्ध ने कहा क्यों नहीं, लोहा है कठोर। बोले लोहे से भी कोई कठोर हो सकता है क्या? बोले हाँ, अग्नि जो उसे भी पिघला देती है। भंते आज्ञा दीजिए, आगे कुछ पूछने की जिज्ञासा होती है, अग्नि से भी कोई कठोर है क्या? बोले हां, ददकती आग को पानी बुझा देता है। भंते हम समझते थे पानी कोमल है, लेकिन आपसे ज्ञात हुआ कि अग्नि से भी पानी का प्रभाव विशेष। पानी से भी कोई कठोर होता है? बोले हाँ। बोले वायु, पानी के भरे बादलों को वायु उड़ाकर ले जाता है, बलिष्ठ, कठोर कहो बलिष्ठ कहो। बोले भंते, वायु से भी कोई बलिष्ठ होता है क्या? बोले हाँ, वो होता है मनुष्य का शुभ संकल्प। वायु को भी मोड़ने की आइडिया होती, और वायु का फायदा ट्यूबों में भरकर ट्रैक्टरों में भरकर लिया जाता है, वायु का रुख बदला जाता है आदि आदि। मनुष्य का संकल्प बल, शिष्यों में इतनी ही योग्यता रही होगी और सभी सहमत हो गए कि संकल्प बलिष्ठ होता है। फिर एक कथा चली कि एक महापुरुष थे और एकांत में बैठे थे और चार प्रकार की व्यक्तियां उनको दिखी। उस महापुरुष ने प्रणाम किया तो चार प्रकार की वो देवियां अथवा व्यक्तियां आपस में कहने लगी कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ी, मुझे महात्मा ने प्रणाम किया। आखिर उनमें तू मैं हो गई तो किसी देवी ने कहा चलो महात्मा से पूछे, हम चार में बड़ा कौन और आपने चारों में चारों को प्रणाम किया कि दो को किया कि एक को किया। उन देवियों ने कहा कि महाराज हम विचरण करते हुए आपके आगे सादृश्य हो गए, दिखने में आ गई, आपने प्रणाम कर लिया, अब हमारे में तू मैं हो गई, आपने हम चारों में से किसको प्रणाम किया। महात्मा ने पूछा तुम कौन हो, बोले मैं विधात्री हूं अथवा भाग्य का विधाता हूं, भाग्य लिखता हूं। लिखे हुए भाग्य को पलट सकते हो अथवा दूषित व्यक्ति हो उसे तुम कोई अच्छी जगह पर पहुंचा सकते हो, अच्छे व्यक्ति हो उसे तुम नीच योनि में डाल सकते हो क्या। बोले नहीं। तो बोले बैठ जाओ, तुमको प्रणाम नहीं किया। दूसरी देवी, महाराज मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं धन धान्य से संपदा से लोगों को भर सकती हूं। बोले देवी लक्ष्मी आ जाती ना तो आदमी अपना फजूली खर्च बढ़ा देता है और धन के मद से न करने जैसा करने लगता है, न बोलने जैसा अपने रिश्तेदारों को बोल देता है, न खाने जैसा खाने लगता है, शराब कबाब छुपके अथवा जाहिर में दिखावा करने के लिए। अधिक धन विवेक दबोच देता है, विलासी बना देता है, भोगी बना देता है, अहंकारी बना देता है। हे धन की देवी मैंने तुमको प्रणाम नहीं किया। तीसरी महिला ने कहा महाराज मैं बुद्धिदात्री हूं, बुद्धि की देवी हूं, ये प्रचलित कहानी है, इसमें बुद्धि के दाता तो सूर्य नारायण, बुद्धि के देव सूर्य नारायण मान लो, जो भी आपको मानना है, मैंने कहानी जो सुनी उसके आधार पर एक कथा को समझा रहा हूं। इसमें मैं मेरी अनुभूति की बात बताऊंगा बाद में। तो बुद्धिदात्री देवी हो, लेकिन मार खाने से बुद्धि आती है और मार और विघ्न चले जाते तो बुद्धि सो जाती, जब प्रॉब्लम आते ना तो बुद्धि खुलती है और सुविधा आती है ना तो बुद्धिमान भी बुद्ध हो जाते, न करने जैसा करने लगते, न खाने जैसा खाने लगते, बड़े बड़े बुद्धिमान। क्या ख्याल है, बड़ी बड़ी क्लबों में बुद्धिमान क्या क्या करते हैं, विदेशों में अपनी पत्नी छोड़कर और की पत्नी, अपना पति छोड़कर और का पति, बुद्धिमान तो कह जाते हैं लेकिन दुराचार कितना हो जाता है। रोक और पोप खड़े खड़े नाचता नाचना जीवनी शक्ति को हरास करना, फिर खड़े खड़े कोल्ड ड्रिंक पीना, 42 साल की उम्र में पैरों की पिन्नियों में ऐसा दर्द होगा कि नींद हराम कर देगा, ये भी तो बुद्धिमान करते हैं। इसलिए मुसीबत आती है तो बुद्धिमान की बुद्धि थोड़ी खुलती है और थोड़ी सी सुविधा हो गई तो बुद्धि गायब हो जाती, हे बुद्धि की देवी, मैंने तुम्हें प्रणाम नहीं किया। चौथी महिला ने कहा, महाराज मैं संकल्प शक्ति हूं। महाराज ने प्रणाम किया कि देवी मैंने तुम्हें ही प्रणाम किया। बुद्ध के शिष्य भक्त इस कहानी से वहीं रुक गए। लेकिन मुझे शास्त्रों से और गुरु कृपा से और भी कुछ दिखा है। संकल्प की देवी को धन्यवाद हो। संकल्प ठोस होता है और कुछ भी कर सकता है, धन्यवाद हो। लेकिन मुझे कुछ और आगे का दिखा है। चट्टान से मजबूत है, लोहा लोहे से मजबूत है, ये और सबसे मजबूत है संकल्प। यहां तक उन शिष्यों ने सुना और मान्यता चल पड़ी। मेरे तक वो किताब पहुंचा और मैंने उसको आज सुना, आज ही सुना। मैं कहूंगा कि इस लोहे से मजबूत, अग्नि से मजबूत, संकल्पों से भी मजबूत, ठोस कोई और चीज मुझे मिली है। और केवल मुझे मिली है इसलिए वो बढ़िया चीज है, ऐसा नहीं है। वास्तव में बढ़िया है और उस चीज को पाने में मुझे गुरु की कृपा का सौभाग्य मिला। संकल्प कितना भी बड़ा हो, कुछ भी पाने का, आपने वो पा लिया, या तो पाई हुई चीज रहेगी और आप चल जाएंगे, या तो आप रहेंगे और चीज मिट जाएगी। क्या ख्याल है? प्रसिद्ध कहावत है, कि तुम फलाने जैसे बनो। फलाने जैसे बनो, जिधर का जो व्यक्ति प्रसिद्ध होता है उधर की परंपरा लोग चला लेते हैं। विदेश में दो मूर्ख भाइयों ने पेट्रोल जलाने, ये स्टोव जलाने के लिए मिट्टी तेल के बदले पेट्रोल डाल दिया। अब पेट्रोल डाला हुआ प्राइमस जो ही दिया साले गई, एकदम भड़का। एक तो वही मर गया, दूसरा भाई विकलांग हो गया। लेकिन उसकी संकल्प शक्ति ऐसी रही कि विकलांग होने के बाद भी उसने अपना संकल्प पढ़ने का रखा और बड़ा विद्वान हुआ। और भी जानकारी बढ़ाते बढ़ाते वो राज्य सत्ता में पेठ प्राप्त हुई और एक सरकारी अच्छी संस्था का महानिर्देशक बन गया, विकलांग। और उसका निर्देशन ऐसा बढ़िया रहा कि युद्ध के समय फौज को उत्साह देना, पौरुष भरना, फौज का भी निर्देशक बन गया। तो उस इलाके में बोलते तुम ऐसा बनो ऐसा बनो। लेकिन निर्देशक मर गया, अब कौन से चोले में भटक रहा है मुझे पता नहीं। बन बन के खेल बिगड़ जाते, लेकिन बन बनने के बाद जो बिगड़ते हैं, फिर भी जो नहीं बिगड़ता, मिलने के बाद जो बिछड़ते हैं, फिर भी जो नहीं बिछड़ता, होने के बाद जो अनहोना हो जाता है, फिर भी अनहोना नहीं है। सबसे ठोस और मजबूत है तुम्हारा आत्मा परमात्मा, जिससे संकल्प उठता है। और संकल्प सफल होता है, चीजें देता है, चीजें चली जाती है, संकल्प बदल जाते हैं, फिर भी जो नहीं बदलता है वो सर्वोपरि ठोस है, तुम्हारा आत्मा परमात्मा। मुझे तो ये लगा, एक से एक संकल्पवान दुनिया में हो के चले गए, लेकिन उनका धी बिगनिंग कहां से हुआ? पानी की एक बूंद से। और धी एंड कहां हुआ? कब्रस्तान या तो शमशान। वो कौन देव है जो ऐसे कई संकल्पवान पैदा कर लेता है, नाम रोशन करके फिर समा जाते और दूसरे पैदा होते रहते? राम अवतार पंडित, उसने ऐसा कोई ग्रंथ पढ़ा, फिर दूसरा भी ऐसा ही ग्रंथ पढ़ा। बिजनौर की बात है, आपके यूपी में बिजनौर है, उसने अपनी लेखनी उठाई और हजार पन्नों वाला मोटा ग्रंथ लिख डाला कि पुनर्जन्म नहीं होता। राम अवतार शर्मा बिजनौर वाले, और वो कैसा लीलाधारी है। प्रह्लाद का बाप बोलता है कि भगवान भगवान कोई नहीं होता, हिरण्यकश्यपु अकेला भगवान है धरती पर, बाकी सब बकवास है, राजा ही प्रभु होता है। मैं कहता हूं उस प्रभु की कैसी लीला है कि जो भगवान अपने सिवाय कोई भगवान को मानता नहीं, ऐसे के घर में प्रह्लाद रूपी भक्त का अवतरण करा दिया। हिरण्यकश्यप की बुद्धि, दादागिरी और उसके सलाहकार और उसके गुरु और उसके गुरुपुत्र जोर मार मार के थक गए प्रह्लाद को समझाने में, लेकिन प्रह्लाद ने कहा कि वासुदेव पिताजी आप में भी वो भगवान है और सर्वत्र है। बोले नहीं, मैं ही भगवान। पिताश्री, जल में स्वाद उसका है, पृथ्वी में गंध उसकी है, अग्नि में तपन उसी की है, चांद में शीतलता उसी की है, माँ में वात्सल्य उसी का है, बाप में अनुशासनी ऊर्जा उसी की है। चुप रहे मूर्ख कहे का। भक्त बेटे को चुप कराते कराते वे सदा के लिए मौत की गोद में चुप हो गए, ऐसा बालक भगवान ने दे दिया। मैं तो भगवान को कहता हूं, भगवान आप चुपचाप बैठते तो आप भी बोर हो जाते होंगे, कुछ न कुछ लीला आप किए बिना रहते नहीं। नर्मदा किनारे हम बैठे थे कि जब तक नर्मदा माता आएगी नहीं, बात नहीं करेगी, तब तक हम उठेंगे नहीं। कैसे नहीं उठते देखते हैं, आंधी चली, तूफान चले, बड़े बड़े बरसात की बूंदे आई, हमको उठा दिया। अपनी हेकड़ी से तुम बैठे हो, लो उठो बाबा। और मछुआरों की बस्ती में कच्चे घर थे, मिट्टी के बरामदा था, हम ओढ़ के बैठे थे, रात के 12:30 उठे होंगे, 2 बजे कोई मछुआरा पेशाब के बहाने बाहर निकला और उसने जाकर देखा और पूरे गांव में जाकर कहा कि कोई ऐसा उड़ के फलाने की दीवाल विवाल तोड़कर न जाने क्या चोरी करेगा या क्या करेगा पता नहीं। गांव के लोग मछुआरे थे, बड़ौदा से लगभग 60 किलोमीटर का अंतर होगा, चाणोद करनाली के मछुआरे, मच्छी खाना, गाली देना, ये तो उनका स्वाभाविक था। और बड़ी बड़ी गालियां, ऐसी मस्त गालियां और क्या क्या बोले, और कुछ हथियार लेकर 150-200 मछुआरों का टोला आधम का, जिसको तुम बापू बोलते हो उस पर, और हल्ला गुल्ला देखकर हम उठे। हमें पता ही नहीं था कि हम कोई गालियां बोक रहे, हमारे तो हम उस टोले के बीच से गए। वो कौन देव है कि टोले के 2 हिस्से हो गए, एक इधर हो गया एक उधर हो गया, मेरा बाल बांका नहीं हुआ और भगत बन गए। वो कौन है भगत बनाने वाला और मुझे उठाने वाला? मैं यहां से नहीं उठूंगा, उठा दिया। फिर 150-200 भिजवा दिए। सुनाने को सुना दिया और हम अनजान होकर उस भीड़ से निकले तो उस भीड़ को कोई सोचता कि ये तो शादी नहीं हुई होगी तो कहीं और चली गई होगी और यार में फंसी होगी इसीलिए बेगाना होकर बाल बढ़ाकर उसकी याद में भटकता हुआ है। किसी ने सोचा कि ये तो कोई पहलवानी में हारा हुआ है इसीलिए ये बाल बढ़ा के नर्मदा किनारे। किसी ने कुछ सोचा, किसी ने कुछ कहा, कुछ कहा, लेकिन कहने की सत्ता जो दे रहा था उसने मेरे को उस टोले से पसार किया और वो उनका मन बदल गया है। वो कौन है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम माना अखिल ब्रह्मांड को जो व्याप रहा है, अखिल ब्रह्मांडों के रूप में जो विलसित हो रहा है। मान लो मधुर सरोवर है और उस सरोवर के पानी से बर्फ के अलग अलग छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े बने हैं, फ्रिज में छोटे छोटे बने, बड़ी फैक्ट्री में कुछ बड़े पार्सल बने, कुछ ऐसे बने, और उसी पानी से बने हुए बर्फ के अनेक प्रकार के अनेक डिजाइन के टुकड़े उसी पानी में तैरा रहे, उतरा रहे। ऐसे ही वो वासुदेव अनेक सृष्टियां बनकर स्वर्गीय नर के रूप में तैरा रहे, उतरा रहे हैं, और तैराना उतराना बर्फ का ही पुतली और बर्फ का ही पुतला और बर्फ ही पानी, पानी ही बर्फ और बर्फ ही पानी, ऐसे वासुदेव ही दुनिया और दुनिया ही वासुदेव तैरा रही है, उतरा रही है, और फिर भी जो का त्यों बैठा है वो कितना बलिष्ठ होगा। कहीं इंद्र बना देता है, कहीं मेघ गरजा देता है, कहीं बुद्ध प्रकट कर देता है, कहीं महावीर प्रकट कर देता है, कहीं लीलाशाह बापू प्रकट कर देता है, कहीं आसूमल में से आशाराम लाकर मुरादाबाद वालों की मुरादें पूरी कर देता है सत्संग के लिए। वो कौन है लाला? ओम नमो भगवते वासुदेव। लोहा है कठोर, मजबूत है, चट्टान मजबूत है, अग्नि ये वो सब है, हम बुद्ध की बात पर कुछ हद तक सहमत है। बुद्ध के शिष्य शायद आगे पूछते तो बुद्ध ये अनुभव बोल भी सकते होंगे जो मुझे पता नहीं, लेकिन आज जिस ग्रंथ से मैंने सुना तो मुझे अपने उस परमेश्वर की महिमा याद आई। संकल्प बलवान है वहां तक की तो कथा थी लेखक की, लेकिन संकल्प के बल जहां से आता है और होकर मिट जाता है, संकल्प को जो बल देता है वो कितना बलवान होगा। तो मैं चाहूंगा कि संकल्प ऊंचा करो, लेकिन संकल्प को बल देने वाले में आप थोड़ी देर मरो। बाबा मर जाए कि हाँ, बीज मरता है तो वृक्ष बनता है, अहम मरता है तो परमात्मा का दुल्हारा बनता है, आपका मैं को उस प्रभु में विश्रांति दिला दो, उस प्रभु का ज्ञान पालो कि वो वासुदेव है, वो सत्स्वरूप है, वह चेतन स्वरूप है। अभी तो वह बोलो, लेकिन आगे चलकर तुम्हें लगेगा मैं हूं ही नहीं, वही है, वह और मैं है, दो दिए छोटा और बड़ा दिया एक ही कमरे में रखो, खोजो किसका प्रकाश कौन सा है। दिया छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन प्रकाश तो वही का वही है। ऐसे हम जीवात्मा है, वो तुम परमात्मा हो, हमारा अविद्या का शरीर है, आपका माया का वैभव है, लेकिन महाराज आपकी और हमारी जात एक ही है वासुदेव। आत्मा सो परमात्मा मेरे प्रभु जी, मेरे प्यारे जी, दुनिया मिटती है फिर भी आप अमिट रहते हो मेरे ललार। ये शरीर मिटता है फिर भी मैं अमिट रहता हूं, ये अमिट रहने वाला सबसे बड़ा है। क्या बात है, त्वमेव शरणं गच्छ त्वमेव शरणं
गच्छ
सर्वभावेन भारतः
सर्वभावेन भारत
तत्प्रसादात् परां शान्तिं तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम् स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। तुम सभी प्रकार से तन से जो करते हो, मन से जो सोचते हो, बुद्धि से जो निर्णय करते हो, अहम से जो मानते हो, सब को समेट कर मुझ वासुदेव में आ जाओ बेटे, मंगल हो जाएगा। तुम्हारी मीठी नजर पड़ेगी, उसके भी पाप मिटने लगेंगे। तुम्हारी मधुर वाणी सुनने वाले का बुद्धि विकास, विवेक विकास हो जाएगा। मेटत कठिन को अंक भाल के, भाग्य के को अंक मिटाने वाले तुम हो जाओगे। संत का लेख, संत लेख को मेख मार देते, बोले विधाता ने जो लिखा है लिखा है, लेकिन व्यास भगवान कहते हैं कि विधाता ने तो तुम्हारी आयुष्य इतनी लिखी, लेकिन शंकर तुम शंकराचार्य बनकर वेदों का प्रचार करोगे, मैं तुम्हारी 8 साल आयु और बढ़ा देता हूं। बढ़ा ऐसे कई इतिहास में घटनाएं आती है कि अल्पायु वालों को दीर्घजीवी बना दिया महापुरुषों की दुआ ने, आशीर्वाद। जहां तहां तुच्छ ढंग से जीने वालों को महापुरुषों की दीक्षा शिक्षा ने महान बना दिया। अहमदाबाद में बावला है 25-30 किलोमीटर के अंतर पर देहात, अभी तो खैर जुड़ गया होगा अहमदाबाद। वहां एक लड़के का जन्म हुआ, प्रीतम सिंह जे कुंवरबाई मां के गोद। 10 साल की उस उम्र में बच्चे को छोड़कर माता पिता स्वर्गवास हो गए। सूरदास बच्चा अंधा, उसका नाम प्रीतम, ढपली बजाता और अहमदाबाद स्टेशन पर भीख मांगता। ट्रेन में बैठ जाता आनंद नड़ियाद तक, कभी कभार बड़ौदा तक नहीं तो उतने में ही वो चक्कर काटता, आनंद नड़ियाद अहमदाबाद। कोई सत्संगी लोग अहमदाबाद से नड़ियाद आनंद जहां भी सत्संग हुआ जा रहे थे, बोले बेटा सूरदास है, क्यों भीख मांगता है? बोले माँ बाप मर गए, मैं अनाथ हूं। हमने कथा में सुना है कि जगत का नाथ सबके हृदय में बैठा है, अपने को अनाथ मानना ही अनाथ होना है। मैं विधवा हूं। अरे जगत का पति जीवित है, तू विधवा कैसे? शरीर विधवा है, तू तो सदा सुहागिन है बेटी। मैं विधवा हूं, मेरा कोई नहीं। नहीं नहीं, जगत पति तेरा है, परमेश्वर तेरा है। अपने को विधवा मानकर कोसो मत बेटियां देवियां, और अपने को अनाथ मानकर कोसो मत। ये हमने सत्संग में सुना है, इसलिए सूरदास प्रीतम तू चल, पेट के लिए इतनी है। बोले कभी कभी तो स्टेशन पर पुलिस वाले डंडा मार देते, किसी के बरामदे में सोता हूं तो चोर समझकर प्रताड़ना करते, और फिर समझते लाचार है तो कुछ देते भी है। बोले मोहताज जीवन जीने के लिए विधाता ने तुझे नहीं भेजा है, और ईश्वर की ऐसी लीला है कि कितना भी गिरे से गिरा व्यक्ति हो, अगर उसे सत्संग मिल जाए तो ऊंचे से ऊंचा हो सकता है। अब मुझको ऊंचा कौन करेगा, मैं अनपढ़ और अंधा। बोले देखो निराश मत हो बेटे, हमने सत्संग से पाया है, और तुम चलो सत्संग सुनने, खाना मिल जाएगा। पहले तू खाएगा, बाद में हम लोग खाएंगे। माइयों में होती है सज्जनता, वात्सल्यता। ले गई उस अंध बालक को, सत्संग सुना, भोजन हुआ। 2-4 दिन कथा वहां थी, वहीं धर्मशाला में या टेंटों में रहे। लड़का सत्संग सुनते सुनते इस नतीजे पे आया कि जिसके जीवन में गुरु मंत्र नहीं है वह मूर्ख है। भगवान शिव ने भी कहा है, गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धि ना अन्यथा, गुरु लाभात सर्व लाभो, गुरु हीनस्तु बालिश। बालिश माना मूर्ख। शिव गीता में शिव जी ने कहा, काली माता कलकत्ते में प्रकट हुई और गदाधर को बोलती है कि तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो, मैया तुम्हारा दर्शन हो रहा है। बोले दर्शन हो रहा है भावना के बल से, लेकिन मैया का मैयापन और बेटे का बिटवापन, दोनों की आत्मा की एकता का अद्वैतता का ज्ञान गुरु के बिना नहीं हो सकेगा। काली माता ने गदाधर को आज्ञा दी गुरु करने की और उसी गदाधर ने तोतापुरी गुरु की शरण ली और तोतापुरी ने कृपा करके गदाधर को राम कृष्ण परमहंस बना के दिखा दिया, दुनिया जानती। और नरेंद्र को रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद बना के दिखा दिया। ऐसे ही एक आसुमल लड़का था, उसको आशाराम बापू बनाकर तुम्हारे सामने सदगुरु ने धर दिया। गुरु कृपा क्या नहीं कर सकती, गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। एकलव्य द्रोणाचार्य का चित्र रखकर उसका ध्यान धरते धरते एकटक गुरु को देखते देखते धनुष्य विद्या में इतना आगे बढ़ गया कि अर्जुन भी उनके आगे बोने हो गए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। खैर, महंत भाईदास महाराज थे उस समय सत्संग करने वाले, उसका सत्संग सुनकर सूरदास बालक इस नस्तीजे पे आ गया कि मुझे मंत्र दीक्षा लेनी ही है। भाईदास जी ने कहा कि बेटे मैं कथाकार, मैं संत नहीं, केवल कितना भी बड़ा हो उससे लाइट नहीं जलती, लेकिन पावर हाउस को छुआ हुआ पतला केबल भी घर के सभी साधनों में जान डाल देता है। ऐसे जो संतत्व को उपलब्ध हुए वासुदेव में, जिन्होंने विश्रांति पाई, वासुदेव का जिनको ब्रह्म ज्ञान है, वासुदेव में जिनकी प्रीति है, ऐसा कोई प्रेम से, ज्ञान से और ध्यान की संपदा से संपन्न संत मिले और वो तुझे दीक्षा दे तो तेरा काम बन जाएगा बेटा, और तेरे नाम से कईयों के काम बन जाएंगे। मैं महंत भाईदास की सच्चाई का खूब खूब धन्यवाद करता हूं, भाईदास महंत को प्रणाम भी करता कि चेला बनाने के लिए अगर कान फूंक देते तो बेचारा वहीं भटकता। अपने में योग्यता न हो सदगुरु बनने की और सदगुरु बन जाते हैं, उनकी अपेक्षा भाईदास महंत हजार बार धन्यवाद के पात्र हैं। किसी की श्रद्धा को अपने तक केंद्रित कर देना और अपन ईश्वर से जुड़े नहीं है तो फिर सामने वाला पूरा विकसित नहीं हो सकता। अला बांधू, बला बांधू, भूत बांधू, प्रेत बांधू, तू अपने मन को तो बांध के देखा रब में यार। कन्या मन्या कुर, तुम मेरा चेला में तेरा गुर, दक्षिणा धर, तू चाहे तर चाहे मर। इनसे तो ये महंत भाईदास जी आदरणीय है, वो अभी नहीं है धरती पर उनका शरीर, लेकिन उनकी सच्चाई का मैं स्वागत करता। ये सूरदास बालक खोज करते करते गुरु गोविंद राम जी से दीक्षित हो गया और वो सतगुरु थे। संकल्प से भी बढ़कर जो तत्व है, संकल्प उठ उठ के मिट जाते हैं और सारी सृष्टियां बन बन कर विलय हो जाती है, फिर भी जो ज्यों का त्यों रहता है, उस ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान भी था, प्रीति भी थी और विश्रांति भी थी, ऐसा मेरा अनुमान है, मेरी अपनी मान्यता है। इसमें गुरु मंत्र मिला, ऐसे गुरु से मंत्र मिले और चेला श्रद्धा एकाग्रता संयम और तत्परता, ये चार चीजें चेले में होनी चाहिए। और परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा में प्रीति और परमात्मा में विश्रांति, ऐसी संपदा से संपन्न और लोगों के भलाई से भरा हुआ दिल, ऐसे चार सद्गुणों से संपन्न महापुरुष मिल जाए और ऐसे चार सद्गुणों से संपन्न चेला मिल जाए, जीवन में परिवर्तन हो के ही रहता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं चैलेंज करके पूछता रहता हूं, जिन्होंने दीक्षा ली है उनके घर में पहले की अपेक्षा बीमारियां कम हो गई होगी, झगड़े कम हो गए होंगे, बरकत बढ़ गई होगी, 33 प्रकार के फायदे हुए होंगे जिन्होंने मेरे से दीक्षा ली है। तो गुरु में ये चार महान सद्गुण और शिष्य में ये चार साधना के गुण काम बन जाता है। सूरदास प्रीतम को मंत्र मिला रो लगा महाराज, कभी थोड़ा ऐसा लगे, कभी हंसी आए, कभी रुदन आए, कभी प्रकाश दिखे। गुरु ने कहा बेटा चलते जा, चलते चलते ऐसी वाणी जप करते करते वैखरी के बाद मध्यमा में पहुंचो, फिर होठों में जप करो, फिर कंठ में, फिर हृदय में जप करते शांत हो जाओ, संकल्पों का बाप उसमें विश्रांति पा लो। महाराज एक मिनट भी नहीं संकल्प दशा आ गई तो सामर्थ्य आपके चरणों में होता है, इसीलिए मुझे फिर से बोलना पड़ता है कि ठोस लोहा नहीं है, प्लेटियम ठोस नहीं है, अग्नि चांद भले अपनी जगह पर है लेकिन परमेश्वर का ठोस पना और महान पना इतना इतना है कि जिसका एक आशाराम नहीं हजार आशाराम, और एक जीव वाले ने हजार हजार जीव वाले हजार हजार आशाराम वर्णन करे तो भी वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा वो अनंत और बेअंत परमात्मा ही सबसे विशेष सार है। और उसको अपना बना लो तो वो तुम्हें खूब प्यार करेगा, वो सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। उसका एक ही शर्त है, तू तेरा उर आंगन दे दे मैं अमृत की वर्षा कर दूं, तू तेरा अहम दे दे मैं अपना रस भर दूं। बस आपको फिर दो काम करने, हृदय भगवान को दो तो बाबा आप कैसे दे। फिर वो सूरदास कहां पहुंचा पता है आपको? अरे महाराज वो स्कूल में गया नहीं सूरदास, लेकिन जो बोले तो बड़े बड़े विद्वान दंग रह जा, चार चार विद्वान हस्तलिखित लिपियों से लिखे और कई पुस्तकें छपी, और रोमा रोला ट्रस्ट के ट्रस्टी कुछ दिन पहले वहां की लिपियां ले गया और अंग्रेजी में अनुवाद होता होगा या तो हो गया होगा। मैं उनके आश्रम देखने गया और अहमदाबाद से आनंद तक 80 किलोमीटर का अंतर होगा, 52 आश्रम बने हैं, 50 और 2 आश्रम बने, कहां तो ढपली बजाकर रेलवे स्टेशनों पर भीख मांगकर पेट भरने वाला अनाथ बालक प्रीतम, और कहां संत प्रीतम दास और रोमा रोला ट्रस्ट के ट्रस्टी नाक रगड़ के कुछ प्रतियां ले गए और हिंदी और गुजराती में उनकी पुस्तकें छपी, और उनकी पुस्तकों से कुछ न कुछ हम सुनकर कथा में बोलते हैं लोग। आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनी सेवा, ये प्रीतम दास महाराज का है, मेरा अपना नहीं है। ऐसे गुरु पद प्रेमे पूज्य, ये प्रीतम दास महाराज का है। मैं अब सूरदास बालक नहीं कहूंगा, अब महाराज कहूंगा। दास कबीर चढ़ो गढ़ ऊपर राज मिलियो अविनाशी, वो ध्यान करते करते ऊपरी केंद्रों में आए और अविनाशी सबसे ठोस राज्य मिल गया। प्रीतम दास का शरीर तो नहीं है लेकिन मैं कहूंगा कि सबसे ठोस चीज पाने में वे सफल हुए। उनकी वाणी में पढ़ के सुनाता हूं आपको, प्रीतम दास ने जो बोला है, विद्वानों ने जो लिखा है, फिर छपा है किताब में। गुरु पद प्रेमे पूजिए, बोले गुरु के चरण प्रेम से पूजो। प्रगटे ज्ञान प्रकाश, आपके जीवन में परमात्मा का ज्ञान और उसका प्रकाश प्रकट हो। कहे प्रीतम एक पलक मां करे अविद्या नाश, एक पलक में आप और ईश्वर के बीच जो नासमझी है वो गुरु की कृपा दूर कर सकती। गुरु गोविंद ते अधिक है, गोविंद ने तो कर्म बंधन से हमें संसार में डाला है, लेकिन गुरु तुम्हारे कर्म बंधन काटकर गोविंद तक पहुंचा देता है। गुरु गोविंद ते अधिक है, शुद्ध चित्ते कर जान, अपने शुद्ध चित्त से मान ले जान। कहे प्रीतम करुणा करे आवागमन न होए, गुरु करुणा करे तो जन्म मरण मिट जाता है। गुरु को माने मानवी देखे देह व्यवहार, गुरु को एक मनुष्य मानकर उसके शरीर के व्यवहार की मीमांसा करते रहेगा तो भटक जाएगा। गुरु शरीर में दिखते हैं लेकिन व्यापक ब्रह्म के साथ एक होते, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में अपनी व्यापक आत्मा में वो एक होते। अहमदाबाद वाले बोलेंगे गुरुजी हमारे सामने बैठे लेकिन रात्रि को 8 बजे 10 बजे सत्संग यहाँ कर रहे थे, लेकिन मुरादाबाद वालों से पूछो कि गुरुजी फलाने दिन 10 बजे कहाँ थे, बोले मेरे यहाँ थे। गुरु का आत्मा विभू होता है, व्याप्त होता है। लीलाशाह बापू नैनीताल की कुटिया में है, वहां के लोग बोलते, लेकिन मेरे डीसा के आश्रम में मैं मेरे गुरुदेव का एहसास करता था। गुरु को मनुष्य अथवा एक चोले वाला मत मानो। जैसे आत्मा एक चोले वाला नहीं होता है, ऐसे आत्मा परमात्मा को पाया हुआ महापुरुष एक चोले वाला नहीं होता है, सभी चोलों में चमचम चमक रहा है, वो तो भगवान वाला होता है, ब्रह्म वाला होता है। गुरु को माने मानवी, देखे देह व्यवहार, कहे प्रीतम संशय नहीं पड़े नरक मोजार। उसको मनुष्य मानकर उसकी निंदा या उस पर आरोप प्रत्यारोप, वो अशांति के नरकों में जा जाता। जाके मस्तक गुरु नहीं सो नर निगुरा जान। जिसके मस्तक पर गुरु का मंत्र नहीं, जिसके मस्तक में, वो निगुरा है। कहे प्रीतम पातक नहीं पुरुष नहीं पाषाण। उससे बड़ा कोई पातक नहीं, वो तो मनुष्य रूप में जड़ है। जड़ शरीर को मैं मानता और अपने चेतन आत्मा को भूला हुआ है। मरने वाले को तो मैं मान रहा है, अमर का पता नहीं और अपने को चतुर मानता है। चतुराई चूल्हे पड़ी पूर पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन बिना चार वरण चमार। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं फलानी जाति का हूं। अरे चमड़े वाले शरीर को मैं मान रहा है, मूर्ख क्या पढ़ा लिखा तू? ये तो शरीर पैदा हो के छूट जाते बदल जाते, तू तो चैतन्य परमात्मा का अमर आत्मा पुत्र है, गुरु का ज्ञान ले ले ना बेटा। कह को मरने वाले इस हाड़ मांस के शरीर को मैं मानकर उलझ रहा है, इसकी विशेषता अपनी विशेषता, इसकी जवानी अपनी जवानी, इसकी बीमारी अपनी बीमारी मानता। बीमार है, बीमारी है पेट में, बोलता मैं बीमार। बीमारी है सिर में नाक में, बोले मैं बीमार हूं। नाक जरा गड़बड़ हुआ बोले बीमार हूं, पेट गड़बड़ हुआ बोले बीमार हूं, सिर गड़बड़ हुआ बीमार हूं। अरे सारा शरीर गड़बड़ हो जाए तब भी तू बीमार नहीं है, तू बीमारी को देखने वाला अमर आत्मा लाला परमात्मा का प्यारा अमृत पुत्र है बुद्धू सिंह। मैं बीमार हूं, मैं स्वस्थ हूं, ये ज्ञान तो गुरु के प्रकाश से पता चलता है। मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं। अरे पाप और पुण्य के संस्कार मन में आते हैं और जाते हैं। तू पापी होता तो कथा में नहीं बैठ सकता, पुण्यात्मा ही होता तो धरती पे नहीं होता, स्वर्ग में होता। तू तो पाप और पुण्य का मिश्रण लिए हुए मन से जुड़ा है, इसलिए भटक रहा है। तू दिल भर दाता से जुड़, तेरी सारी भटकने अब भी यही मिट जाए यार। सबसे ठोस वही है, पुरुष नहीं पाषाण। चंद्र बिना जम जानन जामनी, कंथ बिना जम नार। कहे प्रीतम एम गुरु बिना प्राणी पशु गमार। चंद्र के बिना चांदी का अस्तित्व नहीं, कंथ के बिना पति के बिना वस्त्र के बिना नारी का नारीत्व नहीं। प्रीतम जी कहते हैं गुरु के बिना मनुष्य का मनुष्य की मनुष्यता ही नहीं है, पशु है वो पशु। जैसे पशु खाता पीता है, बच्चे पैदा करता है, दुख आए तो घबरा जाता है, सुख आता है तो पूंछ हिलाता है, बाछे खिलाता है, ऐसे ही तो जीवन जिया तो क्या हुआ, कुत्ते से आगे नहीं निकला। दुख में दुखी सुख में सुखी तो कुत्ता भी दिखता है। अरे दुख को पैरों तले कुचल और सुख समाज रूपी देवता के लिए बांट। सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों का उपयोग कर अपने आत्मा को पहचान, बेड़ा पार कर अपना लाला। लालिया कौन सी भ्रांति में पड़े हो, संसार तेरा घर नहीं, दो चार दिन रहना यहाँ। कर याद अपने आत्मा की, स्वराज निष्कंटक जहां। मानव तुझे नहीं याद है, तू ब्रह्म का ही वंशज है, भगवान का तो वंशज हो गया। हाड़ मास के शरीर को मैं मानने की बेवकूफी कब तक करेगा, भगवान हमारा है तो आत्मा भी हमारा है, भगवान चेतन है तो आत्मा भी चेतन है, मैं भी चेतन, भगवान ज्ञान स्वरूप है तो मैं भी ज्ञान स्वरूप, भगवान सुख रूप है तो मैं भी सुख रूप, मेरे इस सुख से मन बुद्धि में सुख आता है, क्या ख्याल है? हाँ मैं चेतन आत्मा हूं, परमात्मा का अमृत पुत्र हूं मैं, ऐसा सोच आज के सत्संग को बार बार सुनना विचारना, और सबसे ठोस लोहा चट्टान उससे भी ठोस है तुम्हारा पिया जो क्या क्या लीला करता है। चलते हैं बिजनौर राम अवतार शर्मा के पास, ग्रंथ लिख डाला, पुनर्जन्म नहीं होता, देखा बापू का सत्संग है ना, जो बात छूटी फिर आ गए वहीं पे, उसके घर बालक पैदा हुआ, वो जो बोलने के लायक हुआ तो उसने कहा कि मैं तो बिजनौर में फलानी गली में रहता था, और मेरे दो भाई दूसरे भी हैं, वो अभी बुद्धे होके जी रहे हैं, मेरी मृत्यु हो गई, मेरे बाप का नाम फलाना था और फलाने फलाने घर में हम रहते थे। राम अवतार शर्मा जांच किया और सिर कूटने लगा कि हाय रे हाय भगवान, प्रहलाद का बाप भगवान को नहीं मानता था, उसके घर में भगवान को मानने वाला दृढ़ भक्त दे दिया, मैं पुनराजन्म को नहीं मानता था और पुनर्जन्म की बात करने वाला बेटा मेरे ही घर में ला दिया, सबसे ठोस तू ही है, सबसे बलवान तू ही है, तुम्हारी गति मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी, ओ ब्रह्मज्ञानी संत नानक जी बोलते मैं दास हूं तुम्हारा प्रभु और सदा कुर्बान जाता हूं, मुझे तो लगता है कि सबसे ठोस तो वही है, और उसमें जितना आप विश्रांति पाओगे आप उस वैसे ही ठोस होते जाओ, तो उसमें कैसे विश्रांति पाए, कैसे उसकी कृपा का फायदा ले, कैसे उसका ज्ञान पाए, कैसे उससे प्रीति बढ़ाए और कैसे उसमें विश्रांति पाए, इतना ही तो समझना है और क्या करना है, कोई बोझा थोड़े उठाना है। सबसे ठोस सबसे बलवान संकल्प है वो, जिन विद्वानों ने कहा उनको हम शाबाश कहते हैं, धन्यवाद, जिन लेखकों ने लिखा हम उनका खंडन या विरोध नहीं करते, लेकिन हमारा अनुभव तो ये है कि सबसे बलवान संकल्प है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि संकल्प जहां से उठता है वो क्या निर्बल है, सबसे बलवानों का उद्गम स्थान आत्मा है, परमात्मा है, तो उसका ज्ञान कैसे पाओ, उसमें प्रीति कैसे हो और उसमें शांत कैसे हो, उसका ज्ञान पाना है तो सत्संग से, वो परमात्मा सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य है, विभू है, और जिनको वो परमात्मा का ज्ञान हुआ है ऐसे महापुरुषों के अनुभव भागवत में और उपनिषदों ग्रंथों में वो हमने वहां से इकट्ठे किए और संकलन करवाया और भगवान स्तुति नाम का एक छोटा सा ग्रंथ बनाया, उसको आप पढ़ते जाओ तो भगवान का ज्ञान आपको आसानी से हो जाएगा। 2-5 रुपए की पुस्तक होगी छोटी सी, अपने स्टॉल पर मिलती, नारायण स्तुति, नर नारी का अंतर आत्मा बनकर जो परमेश्वर बैठा है ब्रह्मांडों में व्याप रहा है, सूर्य को जो चलाता है, चांद को जो चमकाता है, और तुम्हारे हमारे दिलों का जो देवता है, उस भगवान की व्याख्या है, जिन जिन को वो भगवान मिले हैं उन्होंने उनका ज्ञान का वर्णन किया है, उससे भगवत ज्ञान मिलेगा, और दूसरा वो हमारे हैं, जूतों पर कुत्ता पिचकारी लगा रहा था परवाह नहीं, लेकिन तुम्हारे जूते पर कुत्ते ने जरा सा पैर उठाया तो, क्योंकि मेरा जूता है, जूता अपना है तो प्यारा लगता है, तो उसको अपना मानने में तुम्हारे बाप का जाता क्या है, भगवान को अपना मानकर प्रेम करो, प्यारे लगेंगे, बिल्कुल पक्की बात है। रात को सोते समय एक हाथ अपना एक भगवान का, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारी सत्ता मिली मन को बुद्धि को इंद्रियों को काम हुआ अच्छा काम हुआ हमने क्या मैं करता केस जीत गए तो वकील बोलता है देखो मैंने बोला था ना जीत जाएंगे हार गए तो बोले क्या करे जज कर ऐसा था भगवान की मर्जी वो तुम्हारे पर ढोलते बेटा हो गया तो नर्स और नर्स की चाकरानी कहती देखो मैंने बोला ना बेटा होगा बेटी भी बोले क्या करे भगवान की मर्जी ऐसा हराम खोर अहम यश तो अपने सिर पर उठा लेता है अपयश आपको ढोलता है फिर भी आप नाराज नहीं होते हम जैसे तैसे तुम्हारे हैं प्रभु तुम हमारे हो ऐसा करके एक हाथ भगवान का एक अपना प्रभु मैं तुम्हारा हूं ना जैसा तैसा तुम्हारा हूं अहंकारी हूं तो भी तुम्हारा बीमार हूं बेईमान हूं तो भी तुम्हारा अच्छा हूं तुम्हारा मां बच्चे को साफ सुथरा होकर आए तभी उठाएगी क्या नहीं बच्चा जब माँ को पुकारता है तो जैसी भी हालत में है नाक बह रही तो बहने दे कपड़े गंदे तो गंदे मेरा लाल है ऐसे भगवान को पुकारोगे वासुदेव मैं तुम्हारा हूं हे गोविंदा हे अच्युत हे केशव हरिओम 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 रात को सोते समय हाँ राम 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 शिव 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 ओम 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 बोलो 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 भगवान का नाम भगवान की पुकार है ये कोई कर्म नहीं है उसको पुकार है जैसे माँ 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 ऐसे ओम 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 हरि 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 राम 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 माँ 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 मम्मी 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 माँ 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 अले अलग अलग माँ के नाम ऐसे उसके हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम प्रभु जी प्यारे जी प्यारे जी मेरे जी मेरे जी हंसना है तो हंस लेना रोना है तो रो लेना हरि ओम 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 सोते समय घर में करना है और क्या है हरि ओम 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 राम 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 शिव शिव प्रभु जी ओम 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 हरि ओम ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम मेरे प्रभु प्यारे प्रभु ओम 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 हरि 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 शिव शिव शंभो भोलेनाथ ओ परमात्मा रूपी माता तुमको अपने गले लगाएंगे तुम्हें सुख शांति देंगे फिर सीधे लेट जाओ श्वास अंदर गया शांति बाहर आए तो एक श्वास अंदर गया राम बाहर आए तो दे दो श्वास गिनते गिनते सो गए 6 घंटा अचेतन मन में गहरी भक्ति परमात्मा रूपी माँ की गोद में आ जाओगे सुबह उठोगे देखो कैसे होता है रात का आखिरी विचार सुबह का पहला विचार सुबह फिर उसी विचार में थोड़ी देर बैठो फिर देखो सुबह कैसा सुहावना होता है हो गया ना भगवान का स्वरूप समझने के लिए नारायण स्तुति भगवान को प्रीति करने के लिए उसके नाम पे की पुकार और हास्य और फिर भगवान में विश्रांति पाना वो ध्यान में बता दूंगा चुप बैठे हो शर्म नहीं आती बोलो वाह प्रभु वाह प्रभु तुम्हारी जय हो कैसी कथा सुनवाते हो कैसा ज्ञान दिलवाते हो प्रभु तेरी जय हो ऐ बोलो ऐ प्रभु जी ऐ प्यारे जी आ मेरे जी आ मुझे तो लगता है सबसे ठोस तो वही है संकल्प तो भले मान लो बुद्ध की बात का हम खंडन नहीं करते लेकिन हमको उससे भी ठोस परमात्मा तत्व दिखता है यहां से संकल्प उठ उठ के पूरे होते हैं सृष्टियां बन बन कर लीन हो जाती सबसे ठोस वो वासुदेव है अच्युत है गोविंद अल्लाह खुदा खुद ही है बस मैं कराची में सत्संग करके आया उस ठोस के बहाने बनर्जी भुट्टो तो जेट सिक्योरिटी थी और मारी गए हमारे पास तो केवल वो ही था कराची में ऐसा पंडाल इससे तो कम नहीं था वो पंडाल और भीड़ खूब थी लोग देखते ही दंग रह गए कि बाबा इतने सारे लोग पाकिस्तान में हिंदू बाबा को सुनने के लिए इतनी भीड़ वहां के अखबारों ने लिखा बाबा आशाराम ने एक एक फ्रंट पेज पे आया था, कवरेज आता था। तो घर के होते ना तो जरा ऐसा रहता, परदेश में जाते थे लेकिन मुझे कोई परदेशी नहीं लगता, सभी उसी के देश लगते हैं। जो बैठे हो बोलो प्रभु जी एक दिन मन उकता गया
किया दिशा से पूछ गुरुवर किया
आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा के
आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा।